द डीप डाइव में खुश आमदीद। आज हम पेरिस के बिल्कुल मरकज में जा रहे हैं, मगर एफिल टावर या लूवर म्यूजियम नहीं, बल्कि उसके जोशीले थिएटर और ओपरा सीन की तरफ। हमारे पास ना इन जगहों की काफ़ी लंबी फहरिस्त है, नाम, पते, कब खुले, कितनी सीटें हैं और कुछ दिलचस्प कहानियाँ भी हैं। तो आज मकसद ये है कि इस मालूमात से पेरिस के परफॉर्मिंग आर्ट्स की दुनिया की वसत और रंगारंगी को समझा जाए। आइए इस पर तफसील से नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि ये फहरिस्त कितनी बड़ी है, मतलब दर्जनों थिएटर्स हैं, कई बड़े ओपरा हाउसेस भी। ये तो पेरिस की सकाफत का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगता है। कुछ बहुत पुराने या कह लें मशहूर नाम भी होंगे, जैसे कॉमेडी फ्रांसिस। सुना है इसकी एक से ज्यादा जगहें हैं।
जी बिल्कुल सही, कॉमेडी फ्रांसिस तो एक इदारा है, उसके तीन मकामात हैं, सैल रिशलियो, फिर थिएटर द व्यू कोलंबिए और एक छोटा स्टूडियो थिएटर भी है। और वो जो सैल रिशलियो है उसकी अपनी एक शानदार तारीख है। एक और बड़ा नाम थिएटर दू पाले रॉयल है जो 1831 से कायम है और इसे तो 1993 में मॉन्यूमेंट हिस्टोरिक का दर्जा भी मिला, मतलब कौमी वर्षा समझे।
ओ वाह,
तो ये सिर्फ इमारतें नहीं है, ये जीती जागती तारीख है एक तरह से।
तारीख से याद आया, इस लिस्ट में कुछ थिएटर्स के पुराने नाम भी लिखे हैं। ऐसा लगता है कि उनकी शिनाख्त वक्त के साथ बदलती रही है ना?
हाँ, ये बड़ा दिलचस्प नुकता है। पेरिस में इतने सारे थिएटर्स का होना ही मुख्तलिफ तारीखी अदवार की वजह से है। हर दौर ने अपना रंग छोड़ा है। और जी हाँ, नाम बदलना तो काफ़ी आम था। मिसाल के तौर पर थिएटर एंटोइन सिमोन बैरियो को ही देख लें। ये पहले थिएटर द मेनोपेजर्स कहलाता था, फिर थिएटर दिस आर्ट्स बना, फिर ओपेरा बूफ और कॉमेडी पेरिजियन भी।
इतने सारे नाम
का ड्रामा या मालिक कौन था? इसी तरह कॉमेडी को मार्टिन पहले कॉमेडी रॉयल कहलाता था। हर नाम के पीछे ना एक छोटी सी कहानी छुपी होती है शहर की।
वाकई ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, तो ये सिर्फ बड़े या तारीखी नाम ही नहीं है, फहरिस्त में कुछ मुनफरिद किस्म की जगह भी नजर आ रही हैं, जैसे ये ला कार्तुश्री द विंसेन, ये क्या चीज है?
हाँ, ला कार्तुश्री, वो असल में एक पुरानी कारतूस बनाने की फैक्ट्री थी। बहुत बड़ी जगह है, उसे थिएटर वालों ने इस्तेमाल करना शुरू किया और अब वहाँ चार अलग अलग थिएटर ग्रुप्स काम कर रहे हैं, थिएटर द लक्वारियम, थिएटर दू शौद्रों, थिएटर द लेपे दे बोआ और सबसे मशहूर शायद थिएटर दू सोले। ये एक तरह का थिएटर गाँव बन गया है।
थिएटर गाँव, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है।
जी, फनकाराना कम्युनिटी की एक बेहतरीन मिसाल है वो जगह।
और एक और नाम मैंने देखा, थिएटर ड्यू टॉन, लिखा है कि ये फ्रांस का पहला फ्रेंको जापानीज थिएटर था। और आईवीटी, इंटरनेशनल विजुअल थिएटर, जो पहले ओ थिएटर ड्यू ग्रैंड गिनियोल था। ग्रैंड गिनियोल तो वो खौफनाक ड्रामों के लिए मशहूर था ना?
बिल्कुल, ग्रैंड गिनियोल अपने सनसनीखेज, अक्सर जरा होलनाक कसम के मुख्तसर ड्रामों के लिए जाना जाता था। एक पूरा जॉनरा था वो। आज आईबीटी इस जगह पर है और बिल्कुल मुख्तलिफ काम कर रहा है, बसरी थिएटर पर ज्यादा तवज्जो है, लेकिन इस जगह की तारीख तो बहुत ही अलग है।
कमाल है।
और वो थिएटर ड्यू टॉन का फ्रांको जापानीज होना ये भी दिखाता है कि पेरिस का थिएटर सीन कितना बैन अल-अक़वामी है।
तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हर साइज और हर किस्म की जगह है, मतलब बहुत बड़े शानदार ओपरा हाउसेस से लेकर बिल्कुल छोटी इंटीमेट सी जगहों तक।
बिल्कुल, यही तो पेरिस के परफॉर्मिंग आर्ट्स की खूबसूरती है। एक तरफ आपके पास ओपेरा बेस्टील है और वो तारीखी ओपेरा गार्नियर यानी पैले गार्नियर, जो अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर है। फहरिस्त में थिएटर दे शांस एलिजे और थिएटर नेशनल द लोपेरा कॉमिक का भी जिक्र है। ये सब बड़े अहम नाम हैं
जी।
लेकिन फिर दूसरी तरफ लापतीत लॉज जैसी जगह भी हैं जहाँ शायद सिर्फ 25 लोग बैठ सकते हैं।
सिर्फ 25? वाकई?
जी हाँ। तो ये जो रेंज है ना, बड़े से लेकर बिल्कुल छोटे तक, ये तनवो बहुत अहम है।
ये अहम क्यों है इतना?
देखें, ये तनवो शहर की सकाफती सेहत की निशानी है। इसका मतलब है कि हर तरह के फनकार के लिए और हर तरह के सामीन के लिए जगह मौजूद है। कोई ग्रैंड ओपरा देखना चाहे तो वो भी मुमकिन है, और किसी को बिल्कुल नया तजुर्बादी थिएटर पसंद है तो उसके लिए भी जगह है। ये मुख्तलिफ पैमाने जो है ना, ये मुख्तलिफ किस्म की तख्लीकी सलाहियतों को उभारते हैं, और वो जो फहरिस्त के साथ कुछ इजाफी फहरिस्तें हैं जैसे कठपुतली थिएटर या जो बंद हो गए, वो भी इस मंजरनामे की गहराई और उतार चढ़ाव को जाहिर करती हैं।
और कुछ नाम तो ऐसे हैं जो शायद पूरी दुनिया में लोग पहचानते होंगे, फोलीज बर्जेर या बताक्लान, ये भी इसी मंजरनामे का हिस्सा है।
ہاں بالکل، یہ بھی پیرس کے تفریحی نقشے کا ایک اہم حصہ ہے۔ فالیز ورجے تو 1869 سے ہے، اپنے زرک برک ریویوز کے لیے بہت مشہور ہوا، اور بتاکلاں جو 1865 میں کھلا اس کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے۔ کانسرٹس بھی ہوتے رہے ہیں وہاں، تھیٹر بھی۔ یہ نام پیرس کی رات کی زندگی اور اس کی پاپ کلچر میں رچ بس گئے ہیں۔ تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پیرس صرف میوزیمز اور تاریخی عمارتوں کا شہر نہیں، اس کا پرفارمنگ آرٹس کا منظر نامہ بہت اہم ہے۔ تاریخی طور پر گہرا ہے لیکن آج بھی اتنا ہی زندہ اور متنوع ہے۔ صرف اس فہرست میں شامل جگہوں کی تعداد اور ان کی قسمیں ہی اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ فنون پیرس کی شناخت کا ایک لازمی جز ہیں۔
اور آخر میں ایک خیال آ رہا ہے ذہن میں، ہم نے بڑے ناموں تاریخی اداروں کی بات کی، کامیڈی فرانسیز، اوپرا گارنی وغیرہ، لیکن ان سینکڑوں چھوٹے سٹیجز کا کیا جو اس فہرست میں ہیں، جن کا نام شاید اتنا مشہور نہ ہو؟ ذرا ان انکہی کہانیوں کے بارے میں سوچیں، ان نئے لکھنے والوں، ان ہمت والے تجربات کے بارے میں جو ہر رات پیرس کے کسی نہ کسی کونے میں، شاید کم روشنیوں میں مگر پورے جذبے سے جنم لے رہے ہوں گے۔ کیا پتا اگلا بڑا نام، اگلی بڑی تحریک وہیں سے شروع ہو۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔